श्री भीमसेन आचार्य रचित जय दोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता हैं गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 117 पर आ गए हैं, 117। यहाँ भी नया अनुयोग चालू होता है, उसका नाम है वृद्धि, ऊपर जिसको वृद्धि लिखा है। ये हम भुजगार आदि की बात देख रहे हैं, और हमने अभी अभी उत्कृष्ट वृद्धि, जघन्य वृद्धि उसकी बात देखी थी। इन्हें उत्कृष्ट हानि ज्यादा है क्या, उसमें अल्प बहुत भी लगाया था। अब यहाँ एत्तो वड्डी, अब यहाँ से वृद्धि का कथन करते हैं। तो अभी तक भी वृद्धि का ही किया था ना, तो उसमें जघन्य उत्कृष्ट इतनी बात की थी। अब वृद्धि कितनी होती है, पूर्व जो स्थिति है उससे कितना बढ़ता है, असंख्यातवा भाग बढ़ता है क्या, संख्यातवा बढ़ता है, संख्यात गुणा बढ़ता है, उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। तो कहते अब यहाँ से वृद्धि का कथन करते हैं, इसके अर्थात पदनिक्षेप के अनंतर अब वृद्धि का कथन करते हैं, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। शंका, वृद्धि किसे कहते हैं? तो कहते पदनिक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं। पदनिक्षेप किसको कहा था निकालो, वहाँ भुजगार विशेष कहा था, क्या कहा था? 105 नंबर का पेज, तो पद निक्षेप किसे कहते हैं? तो भुजगार विशेष को पद निक्षेप कहते हैं, यानी भुजगार में जो डिफरेंस हुआ है उसको पद निक्षेप कहा था, यानी उसमें वृद्धि हानि अवर अवस्था ने इसे उसी को बताया था। भुजगार को ही वृद्धि कहा था, अल्पतर को हानि कहा था, और अवस्थित को अवस्थान कहा था। अब यहाँ कहते हैं पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं। विशेष यानी उसमें कितना क्या क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, डिफरेंस कितना है उसमें, उसका यहाँ कथन होगा। देखो खुलासा बता रहे, खुलासा इस प्रकार है, पद निक्षेप में उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान का कथन किया, उत्कृष्ट है इतना ही बताया, किंतु वे वृद्धि हानि और अवस्थान एक रूप न होकर अनेक रूप हैं। मैंने कभी असंख्यातवा भाग ज्यादा है, कभी संख्यात्वा भाग ज्यादा है, जो यथा योग्य है, तो वो एक ही टाइप का नहीं है, अनेक अलग अलग प्रकार का है। यह बात चूंकि इससे जानी जाती है, अतः पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते, वो धी करना बराबर वृद्धि हुआ है, वृद्धि। जैसे हम पहले भी सीखे ना, षट्स्थान पति तो वृद्धि हानि, तो यहाँ कितनी बुद्धि हानि होगी? अनंत गुना तो नहीं हो सकती, क्योंकि अनंत निषेक होते ही नहीं है, असंख्यात होते हैं। तो उसमें एक दो चार कुछ ऐसे निषेक बढ़ेंगे, हम असंख्यातवा भाग कहेंगे। अब पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगी बात। तो कहते हैं पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, इन्हें जानना चाहिए। 118 पृष्ठ पर आए अभी हम। यहाँ पर वृद्धि और हानि की अर्थ प्ररूपणा करने पर पहले उनका स्वरूप कहते हैं। इन दोनों में से वृद्धि दो प्रकार की है। वृद्धि और हानि में से वृद्धि की बात चलेगी तो वृद्धि दो प्रकार से है, दो प्रकार की है, स्वस्थान वृद्धि और परस्थान वृद्धि। कल भी ये स्वस्थान परस्थान की बात आई थी, अब यहाँ समझाएंगे क्या है उसको। उनमें से एक जीव समास के आश्रय से स्थितियों की जो वृद्धि होती है, वो जो और वृद्धि में अंतर चाहिए थोड़ा। ये जीव समास किसे कहते हैं भानुबेन, आपको पता है? हाँ, जैसे एक इंद्रिय में सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त, एक इंद्रिय के चार जीव समास हुए। द्विंद्रिय में भी पर्याप्त अपर्याप्त, तीन इंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे हरेक में कहाँ तक, संगी पंचेंद्रिय तक। तो इनको कहते हैं जीव समास। तो जीव समास है ना, जो कोई पर्याय चल रही, जो कोई भाव चल रहा है। मान लेते एक इंद्रिय में सूक्ष्म है, तो वो सूक्ष्म एक इंद्रिय की बात चल रही है, या एक इंद्रिय इन जनरल कहेंगे, एक इंद्रिय में जो बंद हो रहा है, तो उसमें ही जो एक इंद्रिय के रहते हुए जितना बंद में वृद्धि हुई उसको कहेंगे स्वस्थान। अब एक इंद्रिय में से पंचेंद्रिय में जन्म लिया और वहां जो वृद्धि हो जाएगी उसको कहेंगे परस्थान वृद्धि। देखो ये सेकंड लाइन हम पढ़ रहे हैं, वृद्धि दो प्रकार की है, स्वस्थान वृद्धि और परस्थान वृद्धि। उनमें से एक जीव समास के आश्रय से स्थितियों की जो वृद्धि होती है, वृद्धि कैसे होगी तो अधिक बंद होगा, या यथायोग्य जहाँ संक्रमण से होता है वहाँ, वो भी बात हम कह सकते हैं। तो एक ही जीव समास के आश्रय से होगा, वह स्वस्थान वृद्धि है। यथा उसके लिए बता रहे किसमें ये होता है, चार एकेंद्रियों के। ये चार एकेंद्रिय कौन से है लक्ष्मीबेन? हाँ, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक। हम जीव समास में चार एकेंद्रिय देख रहे हैं। हाँ हाँ, एकेंद्रियों में मूल दो भेद करेंगे, सूक्ष्म और बादर, और दोनों के पर्याप्त पर्याप्त, ये चार जीव समास एकेंद्रियों के हो गए, है ना? तो चार एकेंद्रियों के, चार एक इंद्रिय ने कौन से, सूक्ष्म, बादर और उसमें पर्याप्त अपर्याप्त। तो चार एक इंद्रियों के अपने अपने जघन्य बंध के ऊपर एक समय अधिक आदि के क्रम से लेकर क्या कहते हैं, ये चार अलग अलग जीव समास है। आज पार्टी लगेगी, हो स्लेट जरा निकालना। तो एक इंद्रियों ने जघन्य बंध किया, किसी ने एक समय अधिक बंध, दो समय अधिक बंध, तीन समय अधिक बंध, तो अपने अपने उत्कृष्ट तक एक एक समय के डिफरेंस से अनेक विकल्प हो सकते हैं। इसको फिर पढ़ेंगे। देखो चार एकेंद्रियों के अपने अपने जघन्य बंध के ऊपर एक समय अधिक आदि के क्रम से लेकर जब तक उन्हीं का उत्कृष्ट बंध होता है, तब तक निरंतर बंध वाले उन कर्मों की असंख्यात भाग वृद्धि ही होती है। यानी यहाँ एकमात्र वृद्धि का प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि है, क्योंकि जघन्य से कितना भी ऊपर बंधे, मान लेते जघन्य में से एकदम उत्कृष्ट बंधे तो भी कितना बंधेगा, पल्ले के असंख्यात भाग इतना ही डिफरेंस है। ख्याल में आती बात, उसका उत्कृष्ट बंध कितना है, हम एक इंद्रिय इन जनरल कहेंगे तो एक सागर है मिथ्यात्व का, और जघन्य कितना है, पल्ले के असंख्यातवे भाग कम एक सागर, तो उसमें से कितना भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, पल्ले का असंख्यातवा भाग बढ़ेगा, जो मूल स्थिति है उससे उसका वो असंख्यातवा भाग है। मूल स्थिति हम कहेंगे ना सागर जितनी है या आसपास उसके थोड़ा नीचे, तो भी कितना उसमें बड़ा, पल्ले का असंख्यातवा भाग, जो पल्ले का असंख्यातवा भाग है वो सागर का भी असंख्यातवा भाग होगा, तो कितनी बढ़ी, असंख्यातवा भाग बढ़ी। प्रेरणा बहन ख्याल में आती है बस, देखो क्या कह रहे, फिर देखते हैं। तो एकेंद्रियों में कितनी भी वृद्धि हो गई तो कितनी होगी, असंख्यातवे भाग इतनी होगी। वृद्धि का प्रमाण कितना है हमें उसमें से देखना है, क्या असंख्यातवा भाग बढ़ा या संख्यातवा भाग बढ़ा या संख्यात गुणा बढ़ा, इसको हमें देखना है। तो ये एक इंद्रियों की बात कितनी हुई, जय बहन ख्याल में आई बात दोबारा, एक इंद्रियों में जघन्य बंध, एक इंद्रियों की स्थिति कितनी बनती है, अभी हम पंचेंद्रियों में से आए हुए की बात नहीं कर रहे, अभी एक इंद्रिय है, मिनिमम बंध कितना होता है सागर में, एक सागर में पल्ले का असंख्यातवा भाग कम, इतनी मिनिमम पॉसिबल बंध है वहां पर। किसी ने एक समय अधिक बांधा, दो समय अधिक बांधा, तीन समय अधिक बांधा, अधिक से अधिक कितना बांधा सागर, ये जो जघन्य से अधिक कितना बांधा, पल्ले के असंख्यातवे भाग अधिक बांधा, तो सागर जितनी हो जाएगी, है ना। जो कम था, जैसे हम सागर के बदले यहाँ 100 समझते हैं और पल्ले के असंख्यातवे के भाग के बदले वहाँ 2 संख्या लेते हैं, तो पहले 2 से कम बनता था, अब 2 अधिक बंधा तो हम कहेंगे पूरा 100 बन रहा, तो डिफरेंस कितना, 2 का ही होगा, वो 100 का 50वां भाग है। अभी हमें क्या देखना है, पल्ले के असंख्यातवे भाग कम था यहाँ पर सागर से, ये एक इंद्रियों की जघन्य स्थिति बंध कितना है, पल्ले का असंख्यातवे भाग कम, भाग कम एक सागर, ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व प्रकृति की बात चल रही। अब एक समय अधिक बांधेगा कोई, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, 4 समय अधिक, जघन्य से अधिक, तो जघन्य से कितना अधिक बांध सकता है, पल्ले के असंख्यातवा भाग अधिक बांध सकता है, जो हमने ऑलरेडी कम करके बताया था उसी में पल्ले का असंख्यातवा भाग मिला दो तो एक सागर हो जाएगा। ये बात ख्याल में आई। अब किसी ने इतनी स्थिति बांधी थी और एकदम उसकी उत्कृष्ट बंध भी जाए, मान लेते हैं उसका संकलेश बदल कर एकदम उत्कृष्ट हो जाए, तो कितना अधिक बांधा उसने, पल्ले के असंख्यातवा भाग अधिक बांधा, तो पल्ले का असंख्यातवा भाग, ये जो मूल ओरिजिनल जो है उसका कितवा भाग है, असंख्यातवा भाग है, क्योंकि जो पल्ले का असंख्यातवा भाग है वो जो सारा सागर जो है उसका भी असंख्यातवा ही भाग है, तो ओरिजिनल जितना बांधता था उससे अधिक कितना बंधा, असंख्यातवे भाग प्रमाण वृद्धि हुई, असंख्यातवा भाग अधिक, इसको असंख्यात भाग वृद्धि कहते हैं। देखो पहले ये टर्मिनोलॉजी समझ लो, यहां हमारे कंसर्न क्या है, असंख्यात भाग वृद्धि जब कहेंगे तो उसका अर्थ होता है जो ओरिजिनल एक अमाउंट है उसको असंख्यात से भाग दो और जो संख्या आएगी वो ओरिजिनल में मिला दो, यानी x प्लस x का असंख्यातवा भाग, इसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। अभी संख्यात भाग वृद्धि करना है तो क्या करेंगे, x को संख्यात से, ये संख्यात की साइन है, x को संख्यात से भाग देंगे और वो ओरिजिनल x में मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, संख्यात भाग वृद्धि। ये दो बातें समझ में आई। अब यदि संख्यात गुणावृद्धि कहना है, देखो अभी हम मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, यानी x को nu से गुणा करना है। जैसे हम कहेंगे 100 का पांचवा भाग 100 में मिलाया, तो हम कहेंगे वो संख्यात के लिए हम 5 देखते हैं, तो 100 का पांचवा भाग कितना है? 20। तो 100 में 100 का पांचवा भाग मिलाया तो 120 हो गए। अब इसको संख्यात गुणा करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएंगे। संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुणा वृद्धि का डिफरेंस ख्याल में आए? जय बेन, संख्यात से डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करना, जो संख्या जो रिजल्ट आएगा उसको संख्यात गुणा वृद्धि कहेंगे। हाँ, 100 से 120 हुआ यानी 20 बढ़े। हाँ, अभी क्योंकि हमने 5 को संख्यात मान लिया है, ये तो काल्पनिक फिगर्स हैं। यहाँ तो 100 तक के कितना भी हम बढ़ाएंगे, ये संख्यात भाग वृद्धि हुई। 5 को हमने संख्यात कहा तो 100 का पांचवा भाग होता है 20, तो संख्यात वा भाग उसमें मिलाया तो संख्यात भाग वृद्धि हुई, और 500 करेंगे तो संख्यात गुणा वृद्धि। ये बात ख्याल में आई? आपको तो पता है ना। हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। ये छस्थान पति तो में हमने बहुत बार, हाँ इतना तो ख्याल में आया ना। हाँ देखो, तो यहाँ एकेंद्रियों में ये बात बता रहे हैं, एक समय वाली अधिक स्थिति बंधेगी तो भी क्या कहेंगे, वो तो असंख्यात भाग है ही है, क्योंकि सागर में असंख्यात समय होते हैं, और एक समय बढ़ा यानी असंख्यात भाग बढ़ गया। दो समय बढ़े, तीन समय बढ़े, कितना बढ़ेगा? अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात भाग बढ़ेगा। हाँ, 117 नंबर का पृष्ठ है, उसमें अभी हम पांचवी लाइन में आए। तो यहाँ कहते हैं एकेंद्रियों के 4 जीव समास है, सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त, उसमें एक समय दो समय तीन समय अधिक से वृद्धि होते होते अधिक से अधिक कितनी वृद्धि हो सकती है? जघन्य से अधिक कितनी होती है? पल्ल का असंख्यात भाग अधिक। तो ये सारी वृद्धियां जो है उसको क्या कहेंगे? असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। 118, क्योंकि वहां पर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण विचार स्थान पाए जाते हैं। ये विचार शब्द कहाँ सुना है आपने? हाँ, शुक्ल ध्यान के भेदों में पृथक्त्व वितर्क विचार, विचार ने पलटना, संक्रमण होना, और अविचार ने नहीं पलटना। तो यहाँ क्या कहते हैं? विचार स्थान यानी पलटने के स्थान, यानी अलग अलग बंध के स्थान कितना है हमने देखा था, मिनिमम पॉसिबल। सागर में से पल्ले का असंख्यात भाग कम और उत्कृष्ट एक सागर, तो टोटल स्थान कितने हुए? पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण विचार स्थान हुए। तथा उत्कृष्ट स्थिति से नीचे उतर कर बंध वाले कर्मों की भी एक असंख्यात भाग हानि ही होती है। अधिक बंध करने वालों के असंख्यात भाग वृद्धि होती है। मान लेते पहले सागर का बंध कर रहा था और अभी कम बंध कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? असंख्यात भाग हानि। एक ही ये हानि या वृद्धि का स्थान है, असंख्यात भाग वाला। अब दो इंद्रियादि में बता रहे हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और इनके अपर्याप्त, ये कितने जीव समास हुए? देखो, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय 4 हुए और उनके पर्याप्त अपर्याप्त 8 जीव समास हुए। इन 8 ही जीव समासों के भी अपने अपने जघन्य बंध से लेकर अपना अपना कहने का प्रयोजन क्या है? अभी हम अकेले द्विमिर्य की बात करेंगे, द्विमिर्य की बात करेंगे, द्विंद्रिय का उत्कृष्ट बंध कितना है, फिर हम जगन्य की बात देखेंगे।
25 सागर।
जगन्य कितना है?
वैफल्य का संचय का बात है।
हाँ?
नहीं, जो एकेंद्रिय से आता है,
एकेंद्रिय और द्विंद्रिय में बहुत बड़ी गैप है। नहीं, 25 सागर में पल्य का संख्यात्वा भाग, अभी असंख्यात्वा मत कहो, पल्य का संख्यात्वा भाग कम। पहले एकेंद्रियों के लिए कितनी थी? सागर में से पल्य का असंख्यात्वा भाग कम। अब यहाँ द्विंद्रिय में दो इंद्रिय की बात चल रही है ना, द्विंद्रिय में उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर और जघन्य स्थिति 25 सागर में पल्य का संख्यात्वा भाग कम। इसको पढ़ेंगे। आओ रंजन बेन, आओ जय जिनेन्द्र, आओ आओ यहाँ बैठो। आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ नहीं, आप लक्ष्मी के कहाँ? यहाँ ठीक है। हाँ आओ, रंजन बेन आए हैं वॉशिंगटन से, वहाँ हमारे करना नियोग के विषय चलते हैं। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे ये विषय क्या चल रहा है उसको देखते हैं। जीवों के जो बंध होते हैं उसमें मिथ्या तो प्रकृति का बंध कितना होता है, तो पहले यहाँ हम जीव समास कितने होते उसकी बात अभी हमने देखी। आपको तो पता है 14 जीव समास, ये क्या होते हैं? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव होते हैं। उनमें एकेंद्रियों के दो भेद सूक्ष्म और बादर, और पंचेंद्रियों के दो भेद संज्ञ और असंज्ञ, साथ हुए ना ये, और उनके हरेक के अपर्याप्त और पर्याप्त, इसको कहते हैं 14 जीव समास। तो हम तो हमेशा बोलते जीव कितना मिथ्या तो बांधता है, तो कहते 70 कोड़ा कोड़ी सागर, अधिक से अधिक बंध कितना होता है। परंतु ये तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त की बात है। एकेंद्रिय जीव कितना बांधता है? तो एक सागर जितना बांधता है, उसकी स्थिति एक सागर। और कम से कम कितना बांधता है? एकेंद्रिय जीव ही कम से कम बांधेगा तो एक सागर में पल्य का असंख्यात्वा भाग कम। अब यहाँ हमारी द्विंद्रिय की बात चल रही है। द्विंद्रिय जीव कितनी स्थिति बांधता है? कोई जीव अधिक से अधिक बांधेगा तो कहते हैं 25 सागर, और कम से कम बांधेगा तो 25 सागर में। ये साइन जो है वो संख्यात की साइन है, पल्ले का संख्यात्वा भाग कम। वहां हमने पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण वेरिएशन देखे थे, अब यहाँ वेरिएशन कितने हो गए? पल्ले के संख्यात वे भाग प्रमाण, यानी कोई जीव मिनिमम पॉसिबल बंध करेगा, इतनी स्थिति बांधेगा, कोई एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक, चार समय अधिक, कहाँ तक जाएगा वो? अधिक करना, इसमें पल्ले का संख्यात्वा भाग कम था, पल्ले का संख्यात्वा भाग अधिक, इतने अलग अलग विकल्प हो गए तो संख्यात्वा भाग अधिक बढ़ेगा ना। पहले हमने असंख्यात्वा भाग अधिक देखा था, तो एक समय बढ़ेगा तो उसको हम कहेंगे असंख्यात्वा भाग बढ़ गया, दो समय बढ़कर बांधेगा तो कहेंगे असंख्यात्वा भाग बढ़ गया। ऐसे करते करते जब हम पल्ले का संख्यात्वा भाग कहेंगे अधिक हुआ, तो कितने बढ़े, संख्यात भाग वृद्धि हुई। एकेंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि ही हो सकती है, द्विंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि एक समय अधिक बांधा है, दो समय अधिक बांधा है, तीन समय अधिक बांधा है। और उत्कृष्ट कितना बन सकता है, पल्ले का संख्यात भाग अधिक, जघन्य से अधिक।
मिनिमम
स्थिति की अपेक्षा,
25 सागर की अपेक्षा बात
नहीं, नहीं 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात भाग, उसमें इसमें माइनस क्या, उसमें प्लस कर दो तो प्लस माइनस चला जाएगा और 25 सागर रह गया। तो वेरिएशंस कितना हुआ, जघन्य से एकदम किसी ने उत्कृष्ट बांधा तो कितना अधिक बांधा, संख्यात्वा भाग अधिक बांधा। जो पल्ले का संख्यात्वा भाग है वो सागर का भी संख्यात्वा भाग है। क्यों, 25 कोड़ा कोड़ी सागर का एक, 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। मान लेते हैं पल्ले का वो चौथा भाग है, चौथे के लिए हम संख्यात कहेंगे, या पांचवा भी ले लो कोई बात नहीं, वो चौथा भाग हम उसको संख्यात कहेंगे, पल्ले का चौथा भाग, वो सागर का कितवा भाग होगा, 10 कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 40 कोड़ा कोड़ी वा भाग होगा, फिर भी उसको हम संख्यात कहेंगे। जो पल्ले का असंख्यातवा भाग है वो सागर का भी असंख्यातवा भाग है, जो पल्ले का संख्यातवा भाग है वो सागर का भी संख्यातवा भाग है। मंजू बेन ख्याल में आती बात, देखो यहाँ पढ़ेंगे आगे, ये द्विंद्रिय से हम पढ़ेंगे। देखो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और असंख्य पंचेंद्रिय पर्याप्त और इनके अपर्याप्त, चार और चार आठ हो गए ना, इन आठ ही जीव समासों के भी अपने अपने जगन्य बंध से लेकर, अपने अपने कहने का प्रयोजन है, द्विंद्रिय में उत्कृष्ट है वो 25 सागर, तीन इंद्रिय में उत्कृष्ट है वो 50 सागर, चतुर इंद्रियों में उत्कृष्ट है वो 100 सागर और असंगी पंचेंद्रियों में 1000 सागर। उस अपने अपने से कितना कम बांध सकता है, पल्ले का संख्यात्वा भाग कम। तो अपने अपने जघन्य बंध से लेकर एक समय अधिक आदि के क्रम से, किसी के एक समय अधिक बंधी, दो समय अधिक बंधी, तीन समय अधिक बंधी, कहाँ तक चले जाना, तो अपने अपने जघन्य बंध से एक अधिक क्रम से उत्कृष्ट बंध तक, यानी 25 सागर तक वहां लेना, 50 सागर तक लेना, बंधने वाले कर्मों की अभी कितनी कितनी वृद्धि हो सकते है, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, ये दोनों ही वृद्धियां होती है, यानी अधिक बढ़कर बांधा उतना ही बांध सकते हैं। असंख्यात गुणा तो या संख्यात गुणा तो नहीं होगा, क्योंकि इन आठ जीव समासों में पल्ले के संख्यात में भाग प्रमाण विचार स्थान पाए जाते, विचार यानी पलटना। आपने नाम सुना होगा ध्यान के, शुक्ल ध्यान के वेद पृथक पवित्र का विचार, विचार यानी पलटना, वहां योग पलटते हैं, ज्ञान का जो विषय है उसको पलट, वो भी पलटता है, तो उसको विचार कहते हैं। ये विचार करना वो विचार नहीं है। हाँ, पुनः उत्कृष्ट बंध से, ये तो वृद्धि की बात हुई, अब कोई पहले उत्कृष्ट बंध कर रहा है, द्विंद्रिय वो 25 सागर का बंध कर रहा है, फिर उसने एक समय कम बांधा तो क्या कहेंगे, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात वा भाग कम बांधा, सागर के कंपैरिजन में एक समय कितवा भाग होगा, असंख्यात वा भाग होगा, क्योंकि सागर में असंख्यात समय होते हैं, और एक समय कम बांधा को कितनी हानि हुई, असंख्यातवा भाग हानि। तो कहते अपने उत्कृष्ट बंध से एक समय कम आदि क्रम से नीचे उतर कर, यानी कम बांधने वाला, नीचे उतरना यानी कहीं उतरना चढ़ना नहीं है, कम बांधने को नीचे उतर कर बंधने वाले कर्मों की असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि होती है। वृद्धि की तरफ से कहेंगे तो वृद्धि होती है कहेंगे, और उत्कृष्ट की तरफ से नीचे तक बंधेगा तो हम हानि कहेंगे।
एक सागर में पल्ले कितने,
एक सागर में एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले हैं, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। हाँ, क्या कहते
हैं?
नहीं, उन्होंने
नहीं, पहले आपने 25 बताया।
मैं 25 बोला पहले। अच्छा अच्छा, 10
10 कोड़ा कोड़ी,
10 कोड़ा, क्योंकि हमने हिसाब लगाते समय 10 × 4 40 बताया था।
मैंने पहले 25 लिखा, पीछे में भी
वो 25 सागर द्विंद्रे के साथ मैंने घोटाला किया होगा। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पल्ले होता है,
10 कोड़ा कोड़ी
पल्ले का एक सागर। हाँ, आज रंजन में आए तो उल्टा सुल्टा हो रहा है, क्यों वे? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। आगे बढ़े अभी। देखो, पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये जो बंध का क्रम है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति कौन बांधता है? ये 14 जीव समास में अधिक से अधिक स्थिति कौन बांधता है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव बांधता है, पर्याप्त। कम से कम स्थिति कौन बांधता है?
सूक्ष्म, अरे बादर इंद्रिय पर्याप्त।
मिथ्यात्व की नहीं, इन जनरल बात करेंगे, ज्ञानावरण की बात करेंगे। संगी पंचेंद्रिय बांधेगा। क्यों क्यों? क्षपक श्रेणी में 10वें गुणस्थान में जो ज्ञानावरण का बंध होगा, एक अंतर्मूर्त का होता है और उत्कृष्ट है 30 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब ये जो इसकी अगर बात हम भूल जाते हैं, क्षपक श्रेणी की अपेक्षा बात अगर भूल जाते हैं, मिथ्या दृष्टि अवस्था में अगर हम कहेंगे, मिथ्या दृष्टि की अवस्था में अधिक से अधिक बंध किसका है? संगी पंचेंद्रिय का। और कम से कम किसका है? अब बोलो, एक इंद्रियों का है।
हाँ,
वो किसको होता है? एक इंद्रियों में किसको होता है वो बाद में देखेंगे। एक इंद्रियों में होगा, पर्याप्त के अपर्याप्त?
अपर्याप्त
नहीं, पर्याप्त, इसीलिए मैंने कहा वो बाद में देखेंगे। अभी पर्याप्त अपर्याप्त का घोटाला मत करो, हम इतना ही देखेंगे। संगी पंचेंद्रियों को उत्कृष्ट बंध हो रहा है और मिनिमम बंध किसको हो रहा है? एकेंद्रियों को हो रहा है। अब उसका जो वेरिएशन है, सागर से लेकर कितने, ये अकेले मिथ्यात्व की बात देख रहे हैं, सागर से कुछ कम, उसको हम अभी भूल जाएंगे, हम उत्कृष्ट बंध की अपेक्षा बात करेंगे। इन 14 समास जीव समासों में मिथ्या दृष्टि अवस्था में उत्कृष्ट बंध संगी पंचेंद्रिय कर रहा है, मिनिमम एकेंद्रिय जीव कर रहा है सागर, और उसमें जो कोई वेरिएशन होगा। द्विइंद्रिय के कितनी हो गए?
25
सागर। त्रिइंद्रियों की 50 सागर। चतुरिंद्रियों की 100 सागर और असंगी के 1000 सागर। अभी संगी में जघन्य बंध कितना होगा मिथ्या दृष्टि के? हाँ, मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर। मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति कब बनती है? हाँ, अनिवृत्तिकरण के अंत समय में। देखो, मिथ्या दृष्टि कब तक मिथ्या दृष्टि है? अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, यानी करण लब्धि में भी वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय भी है और मिथ्यात्व का बंध भी है। तो मिथ्यात्व का मिनिमम बंध कब होगा संगी पंचेंद्रियों को? जब करण लब्धि के अंत समय में है, नेक्स्ट समय में सम्यक्त्व प्राप्त करते ही मिथ्यात्व का बंध रुक जाएगा। तो ये करण लब्धि का अंतिम समय है, वहां वो मिनिमम बंध कर रहा है, वो कितना होगा? अंत कोड़ा कोड़ी। अब अभव्यों की अपेक्षा बात करना है तो प्रायोगिक लब्धि में ले सकते हैं, आपकी बात जो है ना वो अभव्यों में हमने पहले देखी थी। अभव्यों में प्रायोगिक लब्धि में हम जघन्य कहेंगे, क्योंकि अभव्य जीवों को भी प्रायोगिक लब्धि तक होती है बात, याद है ना, पंचलब्धि हुई थी अपनी वहां पर। देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे हम एकेंद्रियों में ही वेरिएशन देखने वाले हैं। एकेंद्रियों के जो भेद है ना, कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त। अब बंध की अपेक्षा लेना है ना, तो बादर पर्याप्त को टॉप पर रखेंगे, ज्यादा बंध करने वाला, फिर सूक्ष्म पर्याप्त का नंबर लगेगा,
बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त,
फिर सूक्ष्म अपर्याप्त का नंबर लगेगा और सबसे नीचे बादर पर्याप्त का नंबर लगेगा। बंध में एकेंद्रियों में अगर बंध देखना है तो बादर पर्याप्तों का उत्कृष्ट बंध है और जगन बादर पर्याप्त का और जघन्य बंध भी बादर पर्याप्त का होगा। ये नीचे नीचे अपर्याप्त लेना है सर।
बादर
नहीं नहीं और चार करने पड़ेंगे। ये बादर पर्याप्त का उत्कृष्ट ऊपर होगा। सूक्ष्म पर्याप्त का उत्कृष्ट ऊपर होगा। ये अधिक बंध की तरफ से देख रहे हैं। दोनों ही पर्याप्त पहले लिए, फिर बादर अपर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त का उत्कृष्ट। ये सब उत्कृष्ट की तरफ लिए। बादर पर्याप्त का उत्कृष्ट बंध, उसके नीचे सूक्ष्म पर्याप्त को उत्कृष्ट बंध, बादर अपर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्तों से भी कम करेंगे मैक्सिमम बंध, और सूक्ष्म अपर्याप्त है उनका उत्कृष्ट उससे भी कम होगा। ये उत्कृष्ट वाले बंध हो गए। अब जघन्य का देखेंगे तो इसको इन रिवर्स ऑर्डर लेना है। ये ऐसे लिए ना। अभी जघन्य बंध तो सूक्ष्म अपर्याप्त की जो रेंज है वो छोटी है, तो इसकी रेंज इतनी होगी सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य। उसके नीचे का बंध कौन करेंगे? जो यहाँ बादर अपर्याप्त की जघन्य, उसके नीचे सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य और सबसे नीचे बादर पर्याप्त की जघन्य। यानी एकेंद्रियों में कंपेयर करना है। एकेंद्रियों में से उत्कृष्ट बंध भी बादर पर्याप्त उत्कृष्ट करेंगे और जघन्य भी बादर पर्याप्त ही करेंगे। उसकी रेंज इतनी बड़ी होगी, बादर पर्याप्तों की रेंज पूरी, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक कोई भी बंध कर सकेंगे। बादर अपर्याप्तों की रेंज इतनी, ये सूक्ष्म पर्याप्तों की रेंज इतनी, यहाँ सूक्ष्म अपर्याप्त लिखना है, फिर बादर अपर्याप्तों की इतनी और सूक्ष्म की इतनी।
कम जब एक ज्ञान का कम से कम उगाट देखते हैं,
हाँ
वो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त देखते हैं।
आपका कहना है ज्ञान का कम से कम उगाड़ की बात करें
तो वहाँ पे भी यही अपेक्षा तो प्रतीत नहीं होती।
यहाँ बंद की बात चल रही है, आप उदय की बात कर रहे हैं। उगाड़ में कर्मों का उदय निमित्त है, ख्याल में आती बात। उस समय उसका बंध किस पर निर्भर है? अब यहाँ तो हम मोनी की बात करें, फिर भी अन्य कर्मों की भी स्थिति तो मोनी के ऊपर ही होगी, इन प्रोपोर्शन होगी। जैसे हमने यहाँ एक सागर जहाँ कहा है तो ज्ञानावरण की जो पंचेंद्रियों को कितनी बनती है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी के आगे एक सागर लिखा तो 30 कोड़ा कोड़ी के आगे कितना लिखना पड़ेगा? 3/7 सागर, 3/7 सागर। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, ये बात आने वाली है, ये थोड़ा मैंने पहले ही बताया आपको, आगे के पृष्ठ पर आने वाली है बात। नीचे से छठी लाइन हम पढ़ेंगे, संगी पंचेंद्रिय मिला, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, इन दोनों जीव समासों के अपने अपने जघन्य बंध से लेकर, कितना जघन्य बंध देखा हमने? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। अपने अपने जघन्य से लेकर अपने अपने उत्कृष्ट बंध तक एक समय अधिक आदि के क्रम से, एक समय अधिक बंधेगा तो हम कहेंगे असंख्यात वा भाग बढ़ गया है ना, आदि क्रम से बंधने वाले कर्मों की असंख्यात भाग वृद्धि। फिर जैसे पल्ले का संख्यात वा भाग बढ़ गया तो हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि, और संख्यात गुण वृद्धि, ये तीन वृद्धियां होती है। देखो अंतः कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे, हम एक कोड़ा कोड़ी भी ले लेते हैं फर समझने के लिए, तो एक कोड़ा कोड़ी का अर्थ करोड़ गुना करोड़, उसको कोड़ा कोड़ी कहते हैं। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर से अभी मान लेते हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर बंधा, तो हम क्या कहेंगे उसको? संख्यात गुणा बढ़ गया, संख्यात गुणा वृद्धि। तो संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्त हो या अपर्याप्त, कितना अधिक बन सकता है? एक समय अधिक भी स्त्री बन सकती है, दो समय अधिक भी बनती है, तीन समय भी अधिक, तो उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। अब पल्ले के संख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि होती जाएगी उसके ऊपर एक एक समय से बढ़ते हुए, तो हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। कब तक कहेंगे? मान लेते एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले बन रही थी, अब दो कोड़ा कोड़ी बन रही है, यानी उतनी बड़ी ना, दो गुना हो गई, तो हम कहेंगे वहां से संख्यात गुणा वृद्धि। ऐसे कहते तो कितने हो जाएगी? संख्यात भाग वृद्धि, उसके पहले तक संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि, तीन वृद्धियां होगी संगी पंचेंद्रियों में। यहाँ वृद्धि का प्रकरण है। एकेंद्रियों में कितनी होती है? असंख्यात भाग वृद्धि, एक ही वृद्धि या एक ही हानि हो सकती है। द्विइंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रियों तक असंख्यात भाग वृद्धि या संख्यात भाग वृद्धि, क्योंकि उनसे अपने जघन्य से अपना उत्कृष्ट पल्ले का संख्यात वा भाग अधिक ही हो सकता है, इतना ही डिफरेंस हो सकता है। संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्त हो या अपर्याप्त, उसमें असंख्यात भाग वृद्धि भी हो सकती है, संख्यात भाग वृद्धि भी हो सकती है और संख्यात गुणा वृद्धि भी हो सकती है। ये तीन पॉसिबिलिटी। पंचेंद्रिय अपर्याप्त में भी, अंत कोड़ा कोड़ी में भी संख्यात गुणा का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ लिखा ना दो जीव समासों में। अब ये तो वृद्धि की अपेक्षा बताएं। नीचे से तीसरी लाइन, पुनः नीचे उतर कर बंधने वाले कर्मों की असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, ये तीन हानियां होती है। जैसे वृद्धि होती है, अगर पहले उत्कृष्ट बंधने के बाद कम बंधने लगा तो हम कहेंगे हानि हो रही है। किंतु इतनी विशेषता है कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में किन्हीं कर्मों की, यानी विशिष्ट कर्मों की असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि होती है, यानी असंख्यात गुणा वृद्धि हो जाती है, असंख्यात गुणा हानि भी हो सकती है। अब ये कौन से कर्म है क्या, वो बात आगे आएगी। हाँ, चौथा ऑप्शन, संगी पंचेंद्रियों में पर्याप्तों में, पर्याप्तों में। हाँ, क्योंकि पर्याप्तों में वो कांडक घात वगैरह जो उसकी अभी अपेक्षा है वो हम अभी छोड़ देंगे। अब जो हमने पढ़ा उसी का विशेषार्थ बताएंगे। देखो आगे पढ़ते हैं 119 पृष्ठ पर। जीव समास 14 हैं जो अभी हमने गिनाए थे, इसमें से प्रत्येक में जो अपनी अपनी जघन्य स्थिति से लेकर अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक वृद्धि होती है, यानी बढ़कर बंद होता है, उसको हम कहेंगे वृद्धि होती है, उसे स्वस्थान वृद्धि कहते हैं। यानी उसी पर्याय में एकेंद्रिय का एकेंद्रिय ही रहा, तो एकेंद्रिय के रहते हुए बंद में जो कोई वेरिएशन है उसको कहेंगे स्वस्थान वृद्धि। अब एकेंद्रिय मरकर पंचेंद्रिय में जाता है तो नेचुरली बंद ज्यादा करेगा, तो वृद्धि हो गई, उसको कहेंगे परस्थान वृद्धि। और अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति से लेकर जो अपनी अपनी जघन्य स्थिति तक हानि होती है उसे स्वस्थान हानि कहते हैं। इसी प्रकार नीचे के जीव समास को ऊपर के जीव समास में उत्पन्न कराने पर, नीचे का जीव समास है ना एकेंद्रिय आदि, और ऊपर के जीव समास है ने संगी पंचेंद्रिय ऐसे ऊपर के, उसको ऊपर के कहेंगे, उसमें उत्पन्न कराने पर, ये कराने ये भाषा है वो समझाने के, वो जीव स्वयं अपने परिणामों से वहाँ उत्पन्न होता है, तो कराना ने हमें यहाँ समझना है ना, गणित समझना है, इसलिए तो यहाँ एकेंद्रियादि जीव ऊपर के जीव समासों में उत्पन्न होते हैं। जो स्थिति में वृद्धि होती है, वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि अभी कम स्थिति लेकर आया है, एक केंद्रीय में से कोई जीव पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, तो आते समय कितनी स्थिति थी, सागर के करीबन, एक इंद्रियों में जिसने घटाई है। अब पंचेंद्रियों में आता है तो नई वहाँ अंत कोड़ा कोड़ी सागर का बंध शुरू हो जाएगा, तो सागर से लेकर एकदम अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक बंध होगा, तो उसके सत्ता में जो निषेक है उसकी भी वृद्धि हो जाएगी। और उत्कृष्ट स्थिति से लेकर जो अपनी अपनी जघन्य स्थिति तक हानि होती है उसे स्वस्थान हानि कहते हैं। इसी प्रकार ये आगे का पढ़ रहे थे हम, फिर पढ़ती हूँ चौथी लाइन। इसी प्रकार नीचे के जीव समास को ऊपर के जीव समास में उत्पन्न कराने पर जो स्थिति में वृद्धि होती है उसे परस्थान वृद्धि कहते हैं। यानी उसका भाव पलट गया और अधिक स्थिति बांधने लगा, ये परस्थान कहलाता है। वैसे परस्थान हानि कब होगी? ऊपर के जीव समास को नीचे के जीव समास में उत्पन्न कराने पर जो स्थिति में हानि होती है। कोई पंचेंद्रिय अभी एकेंद्रियों में जाके उत्पन्न हुआ, तो यहाँ से तो भले वो सत्तर कोड़ा कोड़ी के बाद कुछ समयों में वह एक अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न हुआ है, वहाँ तो कम स्थिति बांधेगा, सागर से ऊपर तो बांध नहीं सकता, तो इतनी कम स्थिति बांधी तो ऑलरेडी जो स्थिति है उसमें भी कांडक घात होते हैं, तो स्थिति बहुत वहां घट जाती है, उसको कहेंगे परस्थान हानि। इनमें से पहले किस जीव समास में कितनी स्वस्थान वृद्धि और स्वस्थान हानि संभव है इसका विचार करते हैं। जो हम देख चुके हैं उसी को दोबारा यहां बता रहे हैं। मोहिनी के 28 भेद है, दर्शन मोहिनी के 3 है और चारित्र मोहिनी के 25 है। ये 16 तो 4 चौकड़ी है वो 16 हो गए, और 9 नौकश है वो 25 है, और दर्शन मोहिनी के 3। उन सब की अपेक्षा एक साथ ज्ञान करना संभव नहीं, क्योंकि हर एक की अपने अपने उत्कृष्ट की अलग अलग पोजीशन है। इसलिए पहले मिथ्यात्व की अपेक्षा विचार करते हैं, यानी उसकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है उसकी अपेक्षा विचार करेंगे। पर कहां कौन सी हानि और वृद्धि होती है इसका ज्ञान होना तब संभव है जब हम प्रत्येक जीव समास में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति को जान ले। जघन्य से उत्कृष्ट कितनी अधिक है ये समझ में बात आती है, तो वृद्धि कितनी हुई ये बात भी ख्याल में आ जाएगी। अतः पहले प्रत्येक जीव समास में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का विचार किया जाता है। सामान्यतः यह नियम है, एकेंद्रिय के एक सागर प्रमाण, द्विंद्रिय के 25 सागर प्रमाण, त्रिंद्रिय के 50 सागर प्रमाण, चौइंद्रिय के 100 सागर प्रमाण और असंगी पंचेंद्रिय के 1000 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है, तथा एकेंद्रिय के अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से, यानी एक सागर में से, एक सागर है ना उसकी उत्कृष्ट स्थिति, उसमें से पल्ल्य का असंख्यातवा भाग कम कर देने पर और शेष के द्विंद्रियादि के अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में से पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम कर देने पर जो शेष स्थिति रहती है वह अपना अपना जघन्य स्थितिबंध है। ये बात ख्याल में आई? एकेंद्रिय के लिए उत्कृष्ट से जघन्य के लिए कितना कम करना? पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग। द्विंद्रिय से लेकर असंगी तक अपने अपने उत्कृष्ट में से पल्ल्य का संख्यात्वा भाग कम करना। एकेंद्रिय के 4 भेद है, अभी हमने देखे थे बादर और सूक्ष्म और दोनों के पर्याप्त पर्याप्त, तथा जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा उनके 8 भेद हो जाते हैं। 4 जीव समास और उनके जघन्य और उत्कृष्ट की अपेक्षा 8। जो अभी हमने यहाँ लिखे थे, उत्कृष्ट में भी 4 लगाना और जघन्य में भी 4 लगाना। अब ये तो मैंने ऐसे वर्टिकल निकाला है, अब जो हम पढ़ेंगे तो इस तरह से वो बताने वाले पुस्तक में ऐसा बताएंगे। अभी अब प्रत्येक की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति लाने के लिए उनकी निम्न प्रकार से स्थापना करो। ये 8 हुए ना, उन्होंने इस तरह से नंबर डाले। ये आठ नंबर। पहले नंबर पर बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट, यहाँ पढ़ो पुस्तक में। दूसरे नंबर पर सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट। तीसरे नंबर पर बादर अपर्याप्त। पहले दोनों ही पर्याप्त लिए, बादर और सूक्ष्म के दोनों पर्याप्त लिए, अब दोनों के अपर्याप्त लेंगे। उसमें भी उत्कृष्ट की तरफ बादर अपर्याप्त लेना और उससे कम सूक्ष्म अपर्याप्त का उत्कृष्ट, ये चौथा नंबर हुआ। पांचवे नंबर पर सूक्ष्म अपर्याप्त जघन्य। छठे नंबर पर बादर अपर्याप्त जघन्य। सातवें नंबर पर सूक्ष्म पर्याप्त जघन्य और आठवें नंबर पर बादर पर्याप्त जघन्य। ये क्यों लिखा है वो ख्याल में आई ना, बंद की अपेक्षा। अब ये नीचे के जो क्या फिगर्स है उसकी बात अभी नीचे समझाएंगे। आशय यह है कि एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर जघन्य स्थिति तक मध्य के जितने विकल्प है, विकल्प है नहीं, उसके जो कोई वेरिएशंस है उसके 343 खंड करो, 343 खंड करेंगे यहां से लेकर यहां तक 343 खंड हो जाएगी। अब उसमें समझाते हैं बादर पर्याप्त के कितने वेरिएशंस, खंड ने वेरिएशंस कितने हैं, तो जिसमें मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, ऐसे बादर पर्याप्त उत्कृष्ट से लेकर बादर पर्याप्त जघन्य तक के कितने हैं टोटल 343। वो सब के सब किस में पॉसिबल है, बादर पर्याप्तों में पॉसिबल है। बादर पर्याप्त को जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के एक एक समय के डिफरेंस वाले सभी विकल्प पॉसिबल हैं, वो हमने मान लिए 343 है। वो हो गए तो पल्ले का संख्या तो अभाव, उसको हमने फिर भी ये सबके लिए पल्ले का संख्या तो अभाव कहेंगे, फिर भी सब में वेरिएशन अलग अलग है। तो बादर पर्याप्तों के लिए पूरी रेंज पॉसिबल है और अन्य की रेंज उसके अंदर अंदर वाली होगी, वो कम होगी। हाँ, 343 यानी पल्ले का असंख्या तो अभाव, अभी बताए ना। अभी इसके लिए भी हम पल्ले का असंख्या तो अभाव कहेंगे, किसके लिए, सूक्ष्म सबके लिए, फिर भी वो पल्ले का असंख्या तो अभाव भी छोटा बड़ा अलग अलग होगा। इसलिए इसमें उन्होंने इसको कहते संदृष्टि, काल्पनिक फिगर्स लेके ये बात बता रहे हमको। तो सभी के सभी विकल्प किसको गए, विकल्प है सभी स्थान बादर पर्याप्तों में हो गए। तो बादर पर्याप्त के स्थिति के ये सब खंड पाए जाते हैं, सब में 343 आ गए। सूक्ष्म पर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति की तरफ से 196 और जघन्य स्थिति की तरफ से 98 खंड छूट जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, ये जो इसकी रेंज है बादर पर्याप्त उत्कृष्ट की, उत्कृष्ट से लेकर उसके 198 होते हैं और यहाँ जो जघन्य से बादर पर्याप्त जब तक शुरू नहीं होता है वहाँ उसके 98 यहाँ होते हैं। तो बादर सूक्ष्म की रेंज कितनी है, दोनों तरफ की उतने छोड़ दो। ऊपर की फिगर में देखो, एक बाजू 196 लिखा है, दूसरी बाजू 98 लिखा है। इन दोनों को छोड़ते हुए इनके टोटल कितनी हुई, 294। तो 343 में से 294 उसमें से बाद करना। हाँ, एक बाजू 196 है, एक बाजू 98 है, जो पर्याप्तों में ही संभव है। सूक्ष्म पर्याप्तों में उसके नीचे से के स्थान है, तो 343 में से ये दोनों बाजू के स्थान घटा देना, यानी 343 में से 294 जाएंगे, 49 रह जाएंगे। देखो ये दोनों बाजू के अगर आप निकाल देते हैं तो बीच में 28 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 और 14, ये 49 हो जाएगी। यानी सूक्ष्म पर्याप्तक के दोनों छूट गए, छूट गए का अर्थ उसके कितने रह गए, 49 रह गए। बादर अपर्याप्त, अभी बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट से जघन्य तक रेंज है, उसमें ये 28 और 14 भी छूट जाएंगे, तो कितने रहेंगे, सात रहेंगे ना, बीच वाले के हम टोटल कर सकते हैं, चार एक और दो। तो बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति के तरफ से 224, क्योंकि पहले 196 लिए थे और फिर 28 लिए, ऊपर की फिगर्स को लेते हुए आप समझना। और जघन्य स्थिति की तरफ से 98 और 14 यानी 112 खंड छूट जाते हैं। तथा सूक्ष्म अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति की तरफ से 228 और जघन्य स्थिति की तरफ से 114 खंड छूट जाते हैं, यानी उसका एक रह जाता है। सूक्ष्म अपर्याप्त के उत्कृष्ट से लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त के जघन्य तक, अगर यहाँ जैसे समझाया वैसे समझना है हमको, तो देखो 196 यहाँ लिखा, यहाँ 98 लिखे, फिर 28, मैं बार बार 198 क्यों लिखे, 196 दूसरी फिगर, यहाँ पर 28, फिर 4, 1, 2, 14 और 98। बादर पर्याप्तों की रेंज ये पूरी, सूक्ष्म पर्याप्तों की रेंज इतनी, बादर अपर्याप्तों की इतनी, और ये सूक्ष्म अपर्याप्तों की इतनी। ख्याल में आई, इसमें ही उसके वेरिएशंस हो गए। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से इन फिगर्स में कोई संबंध लगता है क्या, एट रैंडम कुछ भी ले लिए, लगाओ देखो, एक से ये दो गुना, ये दो से चार गुना, इन सब की टोटल सात होती है, इससे 14 हुआ, 14 दिन 28 हुई, इन सब की जो टोटल होती है 49, इससे ये डबल हुए और इससे ये डबल हुए। अब आगे पढ़ेंगे, द्विइंद्रिय के दो भेद हैं। द्विइंद्रिय में दो भेद कौन से, पर्याप्त और अपर्याप्त, तथा जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा उसके चार भेद होते हैं। ये एकेंद्रियों के तो हमने अभी देख लिए, अभी द्विइंद्रिय में भी ऐसा ही लगाना है। द्विइंद्रिय पर्याप्त को यहाँ लेंगे, उसका उत्कृष्ट रखेंगे, और लास्ट में यहाँ द्विइंद्रिय पर्याप्त का जघन्य रखेंगे, और इन बिटवीन उनके अपर्याप्त का उत्कृष्ट और जघन्य रखेंगे। यही बात यहाँ लिखिए, देखो 1, 2, 3, 4 नंबर पर, पहले नंबर पर द्विइंद्रिय पर्याप्त उत्कृष्ट, दूसरे पर द्विइंद्रिय अपर्याप्त उत्कृष्ट, तीसरे पर फिर द्विइंद्रिय अपर्याप्त को पहले लिया और बाद में द्विइंद्रिय पर्याप्त का जघन्य लिया, तो ये चार भेद हो जाते हैं। उसके ऊपर की लाइन पढ़ रही हूँ, अब प्रत्येक की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए उनकी निम्न प्रकार से स्थापना करी। आशय यह है कि द्विइंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर जघन्य स्थिति तक कुल स्थिति के जितने विकल्प हैं उनके साथ खंड करो। ये कोई एट रैंडम फिगर ली है, उसके ऊपर एकेंद्रिय के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। द्विइंद्रिय पर्याप्त के ये सब खंड संभव है, क्योंकि पर्याप्तों में जघन्य से उत्कृष्ट की रेंज सबसे बड़ी है और अपर्याप्तों की रेंज उसके इन बिटवीन है, पर द्विइंद्रिय अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति की ओर के चार खंड और जघन्य स्थिति की ओर के दो खंड छूट जाते हैं। तीन्द्रिय आदि के द्विइंद्रिय के समान ही विवेचन करना चाहिए, उसमें भी हम ऐसे खंड करेंगे तो पर्याप्तों की रेंज ज्यादा है, अपर्याप्तों की इन बिटवीन है। इससे स्पष्ट है एकेंद्रियों के सब भेदों में अपने अपने जघन्य स्थितिबंध से अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबंध पल्य का असंख्यातवा भाग अधिक है और द्विंद्रियादि के द्विंद्रियादि यानी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय उनमें अपने अपने जघन्य स्थितिबंध से अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबंध पल्य का संख्यात्वा भाग अधिक है। ये बात ख्याल में आई? ये यही बात उन्होंने फिर दोबारा समझाई है। इतने विवेचन के बाद कहां कौन सी हानि और वृद्धि होती है इसका विचार करते हैं। एकेंद्रिय संबंधी चार जीव समासों में से प्रत्येक के जब अपने जघन्य स्थितिबंध से उत्कृष्ट स्थितिबंध पल्य का असंख्यात्वा भाग अधिक है या उत्कृष्ट स्थितिबंध से जघन्य स्थितिबंध पल्य का असंख्यात्वा भाग हीन है तो यहाँ वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि क्योंकि असंख्यात्वा भाग बढ़ गया जघन्य से उसका असंख्यात्वा भाग बढ़कर उत्कृष्ट हुआ तो कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि और हानि में असंख्यात भाग हानि ही संभव है उससे ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ जघन्य स्थिति में एक एक समय स्थिति के बढ़ाने पर या उत्कृष्ट स्थिति में से एक एक समय स्थिति के घटाने पर असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है। पर इन जीव समासों के कुल स्थिति विकल्प भी देखो एक एक समय बढ़ेगा वो तो पंचेंद्रियों में बढ़ेगा तो भी हम कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि हुई। तो यहाँ कहते कि एक एक समय बढ़ेगा तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी परंतु टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वेरिएशंस है जिसको विकल्प कहते हैं वो भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण ही है। तो कहते इन जीव समासों के कुल स्थिति विकल्प भी अपनी अपनी स्थिति के असंख्यात में भाग प्रमाण है क्योंकि जो पल्य का असंख्यात्वा भाग है वो सागर का भी असंख्यात्वा भाग है तो टोटल उतने ही वेरिएशंस हो सकते हैं। अतः जघन्य से उत्कृष्ट या उत्कृष्ट से जघन्य स्थितिबंध के होने पर भी देखो जीवों के परिणाम ऐसे है एकेंद्रियों में भी अभी पंचेंद्रियों की बात छोड़ो कोई जीव जघन्य स्थिति का बंद कर रहा है ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि उससे जघन्य स्थिति बंद रही है अब उतनी मान लेते लगातार अंतर्मूर्त भी बंदेगी अधिक से अधिक फिर ऐसे परिणाम हो जाते कि एकदम उत्कृष्ट स्थिति बंद रहे एक समय के पलटने से जघन्य में से उत्कृष्ट बंद करने लगा मन नहीं है तो फिर लोगों को ऐसा लगता है वहां कैसे मन के बिना कैसा राग द्वेष करता होगा और कैसे वहां बंद होता होगा प्रश्न लोग हमें ऐसा लगता है मन के द्वारा ही हम सारे राग द्वेष करते हैं राग द्वेष ये तो चारित्र गुण की पर्याय है और मन क्या है मन किस में निमित्त है राग द्वेष में क्या कहते
हैं
ज्ञान में कौन से ज्ञान में मति ज्ञान में मति ज्ञान से वो सारा प्रश्न शुरू हो जाएगा तो ज्ञान में निमित्त है आंखों से आपको बंद हो रहे हैं ना राग द्वेष हो रहे हैं नहीं होते परंतु आंखों के द्वारा तो हम ज्ञान करते हैं हमने देख लिया वो चुन्नी का कलर ऐसा है फिर उसमें जो हमने राग द्वेष शुरू किया वो तो चरित्र गुण की पर्याय हो गए वैसे यहाँ मन के द्वारा जो हमारे विचार चलते हैं उसके साथ साथ जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं ऐसा लगता है कि मन ही कर रहा है मन नहीं कर रहा कथन आएगा कहीं ऐसा ये मन से राग द्वेष करते ज्यादा करते क्योंकि जितना हम एक्चुअली करते ना उससे मन के द्वारा कल्पना में ज्यादा करते हैं किसी के साथ इतना झगड़ नहीं सकते परंतु मन में तो कितनी क्योंकि डायरेक्ट तो इतने बोलने की हिम्मत नहीं है ना मन मन में तो और ज्यादा कर सकते हैं तो इसलिए लोगों को लगता है मन के द्वारा ही राग द्वेष होते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं एकेंद्रियों में भी जघन्य से कोई उत्कृष्ट भी बंद करेगा तो कितना अधिक कर सकता है पल्य का असंख्यात भाग ये बात यहाँ बता रहे हैं। अतः ये पैराग्राफ का नीचे से तीसरी लाइन 120 पृष्ठ पर, अतः जघन्य से उत्कृष्ट या उत्कृष्ट के उत्कृष्ट से जघन्य स्थितिबंध के होने पर भी क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है। अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि लगाओ उसके पीछे, और ऊपर से नीचे का करेंगे बंद तो हानि कहेंगे। इस प्रकार एकेंद्रिय के वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि और हानि में असंख्यात भाग हानि ही संभव है। ये सारा विशेषार्थ में दोबारा इतना बड़ा विशेषार्थ समझा रहे हैं। तथा द्विंद्रिय आदि के यानी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय अपने अपने जघन्य स्थितिबंध से अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबंध पल्य का संख्यात्व, अभी असंख्यात नहीं कहा, संख्यात्व भाग अधिक है, तथा उत्कृष्ट स्थितिबंध से जघन्य स्थितिबंध पल्य का संख्यात्व भाग हीन है यानी कम है। अतः यहाँ वृद्धि में अब एक समय बढ़ा दो समय बढ़ा तो क्या कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे, और उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। तो इसमें वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि ये दो वृद्धियां संभव है, और हानि में असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि ये दो हानियां संभव है। अपनी अपनी स्थिति के असंख्यात वे भाग वृद्धि होने तक, यानी जब तक उसका वो असंख्यातवा भाग है तब तक हम क्या कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे, और हानि होने तक असंख्यात भाग हानि होती है। तथा जब अपनी अपनी स्थिति के संख्यात वे भाग की वृद्धि या हानि होने लगती है तब संख्यात भाग वृद्धि या संख्यात भाग हानि होती है। ये बात ख्याल में आई, जब तक असंख्यात वा भाग बढ़ता है तब तब हम कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि, उसके और अधिक बढ़ेगा तो हम कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि, हानि में ऐसा ही समझना। यहां तक एकेंद्रियादि जीव समासों में कहां कितनी वृद्धि और हानि होती है इसका विचार किया। अब संगी पंचेंद्रिय के विचार करते हैं। असंगी तक तो बता दिया, संगी में क्या विशेषता है। सामान्यतः संगी पंचेंद्रियों के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोणाकोणी सागर प्राप्त होती है, ये सामान्यतः बात की, और जघन्य स्थितिबंध, अब जघन्य स्थितिबंध मिथ्यात्व का तो इतना नहीं होगा, अंतर्मूर्त हो सकता है कब,
मिथ्यात्व में
मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त स्थितिबंध किसको होगा,
नहीं होगा,
नहीं वहाँ भी अंत कोड़ा कोड़ी होगा। तो ये मिथ्यात्व जघन्य स्थिति बंध मोहिनी का ले लो इन जनरल, अंतर्मूर्त वाला होता है वो कब होगा, क्षपक श्रेणी में मिनिमम किसके होगा, मोहिनी का मिनिमम बंध किसको होगा,
लोप में,
दसवें गुणस्थान में बंध होता ही नहीं,
लोप में, नौवे गुणस्थान के
अंत, नौवे गुणस्थान के अंत में जब बादर लोभ का उदय है तब लोभ का बंध हो रहा है, वहाँ अंतर्मूर्त वाला बंध होगा। तो यहाँ मिथ्यात्व की बंध की बात नहीं है, एक शब्द और इसमें डालो, देखो यहाँ है ना, फिर मैं ये लाइन पढ़ती हूँ। सामान्यतः संगी पंचेंद्रियों के मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोणाकोणी सागर प्राप्त होती है, और मोहनीय का जघन्य करो उसमें, मिथ्यात्व का नहीं, नहीं तो वो घोटाला हो जाएगा। हाँ हाँ, चारित्र मोहनीय का लिखो, मोहनीय का लिखो, क्योंकि दर्शन मोहनीय में बंधने वाले एक मिथ्यात्व ही है, अन्य दो तो बंध से प्राप्त नहीं होती, संक्रमण से प्राप्त होती है। और यहाँ मोहनीय का या चारित्र मोहनीय का लिखो तो ही चले, हम इन जनरल बात करेंगे तो मोहनीय का उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ाकोड़ी और मोहनीय का जघन्य बंध अंतर्मोट, मोहनीय का हो, मिथ्यात्व का मत कहो, क्योंकि एकेंद्रीय भी बांधेंगे तो सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम बांधेंगे, और संगी पंचेंद्रिय मिनिमम कब बांधते हैं? संगी पंचेंद्रिय मिथ्यात्व को, करण लब्धि के अंत समय में। और मोहनीय का जघन्य कब बांधते हैं?
शपक,
हाँ, नवे गुणस्थान के अंत में। अभी हम शपक उपशमक की बात नहीं करेंगे, नवे गुणस्थान के अंत में कहेंगे। पर यह जघन्य स्थिति बंधक शपक श्रेणी में ही होता है। क्यों? क्योंकि उपशम से क्षपक में विशुद्धि ज्यादा है ना, इसलिए वहां से जघन्य कहा, उपशम श्रेणी में ज्यादा होगा इससे। वैसे यदि एकेंद्रियादिक जीव संगियों में उत्पन्न होते हैं तो, अभी एकेंद्रिय मरकर संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, तो विग्रह गति में, विग्रह गति कब कहते हैं? हाँ, एक भाव से दूसरा ट्रांजिट चल रहा है ना, अभी वहां शरीर ग्रहण नहीं किया, तो हो सकता है एक मोड़े से गया, दो मोड़े से गया, तो उसको कहेंगे विग्रह। तो विग्रह गति में एकेंद्रिय में से आया है वो जीव, एकेंद्रिय में था तब तक एकेंद्रिय के योग्य बंध कर रहा था, एकेंद्रिय से मरकर अभी संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ क्या होता है? देखो, संगियों में उत्पन्न होते तो विग्रह गति में असंगी पंचेंद्रिय के योग्य स्थिति बंध होता है। एकेंद्रियों में तो एक सागर के करीब था, विग्रह गति में हजार सागर जितना होने लगेगा, और जब शरीर ग्रहण शुरू हो जाएगा तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर हो जाएगा। और शरीर ग्रहण करने के बाद संगी के योग्य, यानी कहीं से भी आने दो, पहले एकेंद्रिय से द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्थ कोई भी आता है तो वहां अपना अपना बंध कर रहा है, विग्रह गति में आने पर असंगी पंचेंद्रिय जैसा बंध करता है। तो शरीर ग्रहण करने के बाद संगी के योग्य कम से कम अंत कोड़ाकोड़ी सागर स्थिति का बंध होता है, उसमें भी जो कोई उसकी रेंज है उसमें मिनिमम बंध कितना होगा तो अंत कोड़ाकोड़ी। तथा यदि संगी पंचेंद्रिय, पहले कौन सा लिया, एकेंद्रिय, अगर संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है तो विग्रह गति में वो असंगी जैसा बंध करता है और शरीर ग्रहण करने पर संगी जैसा। अब कहते यदि संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होता है तो उसके कम से कम अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंध नियम से होता है, वो भले विग्रह गति में हो या फिर शरीर ग्रहण कर चालू किया हो, उसका तो अंत कोड़ाकोड़ी बंध होगा ही, क्योंकि संगी में से संगी में आया है। अब इनके उत्तर भेदों में पहले सामान्यतः वो मिथ्यात्व की कहा, परंतु वहां तो मोहनी की ही चाहिए थी, यानी वो मिथ्यात्व शब्द बदल, इसलिए यहाँ प्रश्न शब्द क्या डाला है। इनके उत्तर भेदों में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करने के लिए उनकी निम्न प्रकार से स्थापना करो। उत्तर भेद है अभी संगी पंचेंद्रिय जघन्य और उसकी उत्कृष्ट। देखो पहले में पहले यहाँ संगी पम लिखा है, परंतु वो संगी पर्याप्त चाहिए देखो नीचे उसका आशय समझाएंगे। आशय की संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर से, संगी अपर्याप्त की जघन्य स्थिति संख्यात गुणी अधिक है। संगी पर्याप्त की जघन्य स्थिति अंत कोड़ाकोड़ी सागर से, संगी अपर्याप्त की जघन्य स्थिति संख्यात गुणी अधिक है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर आगे आगे भी जानना चाहिए, यानी वो संख्यात गुणा वहाँ यहाँ लेफ्ट से राइट तक आ गए, उत्कृष्ट ये बाजू लिया है उन्होंने। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है यहाँ अपने अपने जघन्य स्थितिबंध से अपना अपना उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यात गुणा अधिक है। पहले हमने असंख्यात्वा भाग अधिक या संख्यात्वा भाग अधिक देखा था, अब संगियों में जो है, संगी पर्याप्तों में भी और पर्याप्तों में भी अपने अपने जगहने से अपना अपना उत्कृष्ट है, वो संख्यात गुणा अधिक होगा। तो वृद्धि का प्रमाण क्या क्या हो सकता है? असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुणा वृद्धि, तीनों पॉसिबिलिटीज है। और अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति बंध से अपना अपना जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुणाहीन है। संख्यात गुणाहीन का अर्थ होता है संख्यात वा भाग है। ऐसे चार संख्या 16 के चार गुणाहीन है, यानी चौथा भाग है। चार गुणा कहेंगे तो 64 हो जाएगा और चार गुणाहीन कहेंगे तो चार हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्रत्येक भेद में असंख्यात भाग वृद्धि, यह वृद्धि के तीन भेद बता रहे, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि, यानी संख्यात गुणा हो जाना डायरेक्ट, ये तीन वृद्धियां, तथा असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, ये तीन हानियां बन जाती हैं। इनका विशेष खुलासा मूल में किया ही है तथा हम भी आगे लिखे अनुसार खुलासा करने वाले हैं, अतः यहाँ विशेष नहीं लिखा गया, यानी इसका और भी खुलासा आने वाला है। तथा संगी पर्याप्तकों में से किसी किसी जीव के किसी किसी कर्म की असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि भी होती है। देखो असंख्यात गुणा वृद्धि का अर्थ क्या होता है? मान लेते दो चार निषेक है, वो एकदम अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाएगी, होगा कोई इसी का आशा? हाँ, देखो जब जीव एक बार सम्यक तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में आता है तो उसके सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी बन गई है। मिथ्यात्व में आने पर क्या होता है? उल्टा संक्रमण, जिसको उद्वेलना कहते हैं। ये दो प्रकृति मिथ्यात्व में से टर्न होती रहती है और वो नष्ट होती है। तो ऐसे टर्न होते 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 मान लेते थोड़े से निषेक बाकी है, हम समझने के लिए मान लेते 100 निषेक बाकी है या एक भी निषेक बाकी है। अब उस पोजीशन में उसने फिर औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व में से संक्रमण होकर अभी उसके अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक बन जाएंगे। तो दो चार निषेक में से इतने हो गए तो उसको क्या कहेंगे? असंख्यात गुणा बढ़ गए ना। इसीलिए कहा किन्हीं किन्हीं प्रकृतियों में, नाम नहीं लिखा है,
खाली दो में ही घटित हो गए।
हाँ, उसमें घटित हो गए। और जब हानि होगी तब असंख्यात गुण, हाँ असंख्यात गुणा हानि होगी और असंख्यात गुणा हानि भी होती है। जैसे ये बता ही दिया उन्होंने, जब किसी जीव के सम्यक्त्व या सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति पल्य के असंख्यात वे भाग के भीतर शेष रह जाती है। हमने तो 10-100 ऐसे संख्या ली, पल्ले के असंख्यात वे भाग या उससे कम भी हो जाएगी और बाद में अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगी तो कहेंगे असंख्यात गुणा बढ़ गए, है ना? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग के भीतर है ना, उससे कम रह जाएगी और तब वह जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है तो उसके सम्यक्त्व को ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक्त्व या सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात गुण वृद्धि होती है। ये बात ख्याल में आई? थोड़े थे निषेक, अभी एकदम अंत कोड़ा कोड़ी हो गए। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व में से संक्रमित होके वो फिर तैयार हो गए, तो इसलिए असंख्यात गुणा बढ़ गए। इसी प्रकार अनिवृत्ति करण में दुरापकृष्टि, वो व का प करना, दुरापकृष्टि की प्रथम स्थिति कांडक, ये प्रथम और स्थिति शब्द अलग है और स्थिति और कांडक शब्द एक है। क्या कहते हैं? अनिवृत्तिकरण का अर्थ होता है ये तीन करण परिणामों में से अंतिम करण, जिसे पहला है अधप्रवृत्त करण, दूसरा है अपूर्व करण और तीसरा है अनिवृत्तिकरण।
ये नवे गुण संघ की बात है, असंख्यात गुण का
तो ये जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान भी है और अनिवृत्तिकरण अन्यत्र भी होगा, कहाँ, क्षपणा में भी होगा, दर्शन मोनी की वगैरह, तो वहां भी यही बात घटित होगी। यहाँ क्या समझना है, दूरापकृष्टि की बात क्या कर रहे हैं, दूरापकृष्टि यानी अभी जो अभी हम नवे गुणस्थान की बात करते हैं, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति थी, अब वहां कांड घात होते चले जाते हैं, तो घटते 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 पल्ले का फिर संख्यात्वा भाग रह गया, पल्ले का असंख्यात्वा भाग रह गया, तो जब असंख्यात्वा भाग रह जाता है तो उसको कहेंगे दूरापकृष्टि, उसमें भी एक एक कांडक का पतन हो जाएगा। पतन होना यानी कांडक प्रमाण में स्थितियों का नाश होना, बहुत सारी स्थितियां है सत्ता में पड़ी है निषेक, तो ऐसा अगर गलेंगे तो एक एक निषेक गलेगा नीचे से, परंतु कांडक का घात होता है तो इतने सारे निषेक एक समय दो समय करते करते एक छोटे अंतर्मूर्त में इतने का नीचे अपकर्षण होता है, उसको कहेंगे कांडक घात। तो यहाँ कहते हैं ये दुरापकृष्टि विशिष्ट नाम है, उतनी स्थिति रह जाने के बाद वहां जो कांडक घात होता है पहला, उसकी अंतिम फाली, अंतिम फाली यानी अंतिम लॉट, हमने देखा था ना इतना बड़ा हमने कांडक देखा, उसके कुछ परमाणु पहले समय में नीचे आए, दूसरे समय में, तीसरे समय में, लास्ट समय में ये रिमेनिंग सारे परमाणु नीचे आ गए, नीचे आए ने उनकी स्थिति कम हुई, तो इसको कहेंगे अंतिम फाली। अंतिम फाली के पतन होने पर असंख्यात गुणहानि होती है, असंख्यात गुणहानि हो जाती है, क्योंकि दुरापकृष्टि संज्ञा वाली स्थिति के प्रथम स्थिति कांडक से लेकर ऊपर की सब स्थिति कांडकों की घात कर शेष रही हुई सब स्थिति असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। ये जो दुरापकृष्टि जिसका विशिष्ट नाम है, वहां जो स्थिति कांडक घात होता है तो घात के बाद कितनी शेष रही, तो कहते असंख्यात में भाग प्रमाण रही गई, असंख्यात वा भाग रहा यानी उसको असंख्यात गुणा हानि कहेंगे।
ये दर्शन मौली के सपने में भी ऐसे ही ले लेता।
हाँ, यहाँ तो अनिवृत्तिकरण गुण स्थान लेना, वहां चारित्र मुनि के ले लो। इस प्रकार संगी पर्याप्तक के चार वृद्धि और चार हानियां होती है। ये संगी पर्याप्तक इतना ही लिया है, अकेला मिथ्या दृष्टि नहीं लिया, मिथ्या दृष्टि में तो ये पॉसिबल नहीं है। तथा संगी अपर्याप्तक के तीन वृद्धि और तीन हानियां होती है, यह निश्चित होता है। ये बात ख्याल में आई, संगी और असंगी में पहले तो बताया है, तीन तीन तो होती है संगियों में, यह असंख्यात गुणा वृद्धि और असंख्यात गुणा हानि भी संभव है। असंख्यात गुणा वृद्धि कब होती है, उद्वेलना करने वाला जब उपशमिक सम्यक को प्राप्त करता है, स्थिति बहुत कम थी और बढ़ाई तो उसको असंख्यात गुणा वृद्धि कहेंगे, और जो क्षपक है वहां जो विशिष्ट कांडक घात होता है तो उसके असंख्यातवा भाग प्रमाण स्थिति शेष रह जाती है, तब हम उसको कहेंगे असंख्यात गुणा हानि। तो हमने अभी तक देखा एक इंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि या हानि हो सकती है, द्विंद्रियों से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक असंख्यात भाग भी और संख्यात भाग वृद्धि और हानि दोनों संभव है। संगी पंचेंद्रियों में तीन तो लिए हैं, पर्याप्तों में और अपर्याप्तों में कॉमन ऐसे तीन है, असंख्यात भाग, संख्यात भाग और संख्यात गुणा। परंतु संगी पर्याप्तकों में जो सम्यक तो प्राप्ति के समय असंख्यात गुणा वृद्धि भी हो सकती है, और वो जो अनिवृत्तिकरण में असंख्यात भाग हानि भी हो सकती है, असंख्यात गुणा हानि, भाग हानि नहीं, गुणा हानि। अब परस्थान वृद्धि का कथन करते हैं। परस्थान का अर्थ क्या देखा था हमने, हाँ, एक पर्याय में से अन्य ऊपर के या नीचे के उसमें उत्पन्न होना, जीव समासों में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में जाना, उसको हम परस्थान कहेंगे। शंका, परस्थान वृद्धि किसे कहते हैं, एकेन्द्रियादिक नीचे के जीव समासों को ऊपर के जीव समासों में उत्पन्न कराने पर जो स्थितियों की वृद्धि होती है उसे परस्थान वृद्धि कहते हैं। देखो एकेन्द्रियों में तो इतना कम बंध है, और जब पंचेंद्रियों में उत्पन्न होता है तो पंचेंद्रियों के योग बंध होने लगता है। पंचेंद्रिय जीव भी जब एकेन्द्रियादि में जाते हैं तो वहाँ बंध कम होगा, और जिसने ऑलरेडी ज़्यादा लेके गए उसके स्थिति कांडक हो गए, और वहाँ उसके एकेंद्रीय की योग्य स्थिति बन जाएगी कुछ काल के बाद। ये सहज होता है, ऐसे कोई विशुद्धि की बात नहीं है, वहाँ तो उसके योग्य संक्लेश चल रहे हैं। देखो जो नित्य निगोद में है उसने अभी तक एक सागर से ज़्यादा कभी स्थिति नहीं बांधी, और पंचेंद्रिय जीव 70 कोड़ा कोड़ी तक के सभी विकल्प हो सकते हैं उसके, है ना? तो कौन सा अच्छा? तो एक सागर से क्या होगा, उसमें से तो कभी नाश होने वाला नहीं है। संगी पंचेंद्रियों को भले अभी बांध रहा है परंतु उसके विचार करने की शक्ति है, और उसमें वो अपना स्वरूप जानकर विचार करेगा, उसमें विशुद्धि वगैरह सभी यथायोग्य लब्धियां होगी, और उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो सकती है। ये बात है उसमें। अब ये तो विषय कल ही ले लेंगे क्योंकि बड़ा विषय है, यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक न हो सदा वेत हो। दोषी सा